ओम शांति। अभी संडे की मुरली, दो मुरलियां थे, दूसरी मुरली में बहुत गुह्य बातें। पहली मुरली तो थी प्रोग्राम बना लो सवेरे सवेरे अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, वो तो हम बनाते ही रहते हैं। दूसरी मुरली में सबसे गुह्य बात थी बाप समान स्थिति, साक्षी स्थिति, साक्षात्कार मूर्त स्थिति, इनके द्वारा थोड़े समय में विशाल सेवा होगी। हम इन पे चर्चा करेंगे। आपको याद हो शांति वन की बात है, दादी जब थी, दादी बिल्कुल ठीक ठाक, अब से 8 साल पहले की बात है, मुरली चलते हुए दादी ने नीचे से ही बाबा को कहा कि बाबा अब साक्षात्कार का पाठ शुरू कराओ ना, बहुत समय हो गया। तो बाबा ने उत्तर दिया कि साक्षात्कार बाप को नहीं तुमको कराने हैं। बाप समान स्थिति बनते ही साक्षात्कार होने लगेंगे। तो ये मुरली थी साक्षात बाप समान बनो, साक्षी दृष्टा बनो, तब साक्षात्कार मूर्त होंगे। बाबा साक्षी दृष्टा है, अब देखो दोनों ऊपर साक्षी दृष्टा हैं। अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है साक्षी भाव। मैं ये मुरली सुन के सोच रहा था, उस दिन से मुझे एक बात बहुत गहरी होती जाती है अनुभवों में। बाबा ने कहा जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। मेरे बहुत सारी चीजें मुझे याद आने लगी जो आंखों से देखी हैं, जो लगता है कि वो खराब हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो हुआ, वो होना था, और उसके पीछे कर्म गति थी। मुझे याद आने लगा अभी बस गिरी, सबको पता है, पता किया, हमें पता चला कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने कंट्रोलर को कहा ये बस नहीं ले जाएंगे, खराब है। उसने कहा नहीं नहीं चली जाए, कोई नहीं ले जाओ। बहुत मना करने के बाद भी उसने बस चालू की, रास्ते में उसका ब्रेक फेल हुआ। आपको पता हो शांतिवन के दो भाई भी उस बस को पकड़ने के लिए भाग रहे थे पीछे से, पता है किसी को? शांतिवन के दो भाई जो मधुबन में गए थे, शाम को उसी बस से आने के लिए बस स्टैंड पे आए थे, और वो भाग रहे उसके पीछे, बस निकल गई और ड्राइवर ने तेज कर दी, उनकी आवाज नहीं सुनी, वो बचे। और एक गीता देवी पार्षद अबू की, वो अच्छी पॉलिटिशियन थी अबू की, उसका उसके परिवार वाले सभी कह रहे थे आज न जाओ कल सवेरे चलेंगे, कहा नहीं मुझे अभी जाना है, वो भी उस बस में बैठी थी वो गई। ऊपर से पत्थर पड़ रहे थे, हमें एक व्यक्ति ने तभी बताया था, उसी समय वो नीचे आया था ऊपर से मदद करने के लिए कि लोगों को निकाल रहे और ऊपर से न जाने कहां कहां से पत्थर आ रहे थे। एक तो वो बड़ा आया ही था, फिर ऐसे छोटे छोटे पत्थर, छोटे तो नहीं कहेंगे, ऊपर से गिर रहे हैं, जिसके ऊपर गिरे उसको तोड़े, वो तो बड़ा आया था। तो मैं सोच रहा था जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए कर्मों की गति के अनुसार। इन सबकी मौत उन्हें खींच रही थी ना, जिन दो शांतिवन वालों की मौत नहीं थी वो चाहते हुए भी नहीं आ पाए, गाली दे रहे थे, बाबा को भी कह रहे थे मदद नहीं करता, वैसे तो कहता है जब बुलाओगे आ जाऊंगा, बुलाया आया ही नहीं, पर आया था ना, उन्हें ड्राइवर को कहा था तेज करो रोकना नहीं, आया था है? उसी दिन पॉइंट आया था, उसी दिन पॉइंट भी था। कल भी गिरी ना एक यूपी में ट्रॉली, 40-45 लोग मरे, तो मौत तो अभी तेज होती जाएगी, लेकिन हमें साक्षी होना है। साक्षी जो कुछ हो रहा है वही तो होना है। नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, पक्का करते चलें सभी। एक दिन में नहीं होता, रोज रोज याद दिलाना है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं, सब निर्दोष हैं। सबको अपना अपना पार्ट है। हमारे आगे पीछे आसपास जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। उसे सहज रूप से स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करना है। तो हमारी मन की स्थिति शांत भी रहेगी, पावरफुल भी रहेगी। मन में जितने कम संकल्प हैं उतनी ही पावरफुल किरणें हमसे चारों ओर फैलती हैं, ऑटोमेटिक फैलती रहती हैं। एक तो हम तब फैलाते हैं जब हम योगयुक्त होते हैं, दूसरा जितना मन शांत उतनी ही पावरफुल एनर्जी हमसे चारों ओर फैलती है। तो हमारे द्वारा प्रकृति का बहुत बड़ा कल्याण होता है। आज किसी बहन ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, मैंने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हंसेंगे मेरी बात सुन के, मैं सोचा नहीं था वो उत्तर कहां से आया मेरे पास। मैंने उसको उत्तर दिया, आया भी ऐसे। उसने पूछा कि जीव जंतुओं की आत्मा कहां रहेंगी विनाश के बाद, तो मैंने कहा परम धाम में, नीचे रहेंगी, सब नीचे रहेंगे। तो कहा ऊपर शिव बाबा, फिर हम सब, फिर नीचे नीचे और नीचे जीव जंतु ये सब। कहा ये मच्छर मक्खी ये छोटे मोटे काटने वाले कीड़े वीड़े ये, मैंने कहा ये होंगे ही नहीं, ये है ही नहीं, इनमें आत्मा नहीं है। तो उसने पूछा इनमें आत्मा नहीं तो उड़ रहे हैं काट रहे हैं ये सब क्यों। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रकृति में चेतनता दिखाई दे रही है ना, पेड़ बढ़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, कितना काम चल रहा है पेड़ों से। प्रकृति जड़ है लेकिन दिखाई दे रही है चेतन, दिख रही है ना। सब पेड़ पौधे देखो खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सुगंधी आ रही है, क्या चेतन दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये चेतनता क्या है? अब ये है गुही ये बात, और आज से आप इस पे विचार रखेंगे, अब चिंतन करना। ये हम श्रेष्ठ आत्माओं के वाइब्रेशंस का प्रभाव है, हमारे चेतन वाइब्रेशंस, मन के वाइब्रेशंस संपूर्ण प्रकृति को चेतनता प्रदान कर रहे हैं। तो मैं जो बता रहा था कि मैंने उसे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रश्न लोग पूछते हैं। तो आज मेरे पास वो आए थे सीताफल, वो थोड़े टूट फूट गए, तो मैंने एक भाई से उन्हें साफ वाफ करा के छटवा के जो रखा, फिर देर में जो मैं देखा उनपे छोटे छोटे मच्छर गूंज रहे हैं। मैंने कहा कहां से आ गए भाई, अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। मैं सोचा मुझे कमरे में नहीं रखने चाहिए, तो सारे मच्छर आ जाएंगे। फिर मैंने उन्हें ढक दिया तो वो कहां चले गए पता ही नहीं चला। तो ये सब कलयुगी तामसिक निगेटिव वृत्ति वाले विकारी मनुष्यों के वाइब्रेशंस की रचना है। इस संपूर्ण वायुमंडल में गंदगी फैली हुई है ना, अगर पावरफुल दूरबीन से देखा जाए तो गंदगी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा, हवा में वातावरण में। उसमें से ये जर्म इन निगेटिव वाइब्रेशंस को ग्रहण करके ये मच्छर ये छोटी छोटी चीजों का रूप लेते रहते हैं। आपने देखा होगा, सब देखते हैं छोटे छोटे वो कीड़े, बारिश हुई थोड़ी देर में उनको लंबे लंबे पंख आ गए, मनुष्य चाहे तो उसको पंख नहीं आएंगे, मैं सोच रहा था उस दिन। और उनको थोड़ी देर में देखा तो पंख हैं, और उड़ उड़ के देखा तो थोड़ी देर में मर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? मनुष्य चाहे तो पंख नहीं आ सकते, वैज्ञानिकों को पंख अब तक बनाना असंभव रहा है, कि मन उसको पंख लगा के उड़ा दिया जाए। और इनको ये छोटी जो चींटियां थी इनको अभी अभी देख रहे हैं, पंख लग गए उड़ रहे हैं और फिर चक्कर काट के वहीं मर रहे हैं। ये निगेटिव एनर्जी का प्रभाव। तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस, हमारे शक्तियों के वाइब्रेशंस अब जब बहुत बढ़ेंगे, इन सबको समाप्त कर देंगे, वायुमंडल को प्योरीफाई कर देंगे, एटॉमिक एनर्जी के विस्फोट का ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू होगा। एटम बम्स जब छूटेंगे तो उससे जो अग्नि फैलेगी ना, उससे वायुमंडल प्योरीफाई भी होगा। तो एक ओर उससे विनाश होगा, दूसरी ओर देवताओं के लिए बहुत कुछ स्वच्छ हो जाएगा। ये जो गंदगी फैली हुई है ये सब समाप्त हो जाएगी, जो सतयुग में चालू नहीं रहेगी। तो हम सभी के वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज है। साक्षी भाव अपनाना है। सभी माताएं ध्यान दें, बच्चों के लिए भी साक्षी पालना करते हुए, उन पर मेहनत करते हुए भी साक्षी, जैसे बाबा हम सब आत्माओं पर मेहनत भी बहुत करता है ना, कितना पढ़ाता है। एक एक आप में से कईयों ने देखा होगा 92 तक बाबा एक एक से कितना मिला, अर्जुन भाई विदेशियों से शायद सर रात एक एक को 5-5 मिनट दिया, वो भाग भी गए बाबा को छोड़ के। मुझे आश्चर्य लगता है, देखो बाबा को तो पता भी था ना ये सब जाने वाले हैं, फिर भी जब तक हैं तब तक मैं इन्हें अपना सब कुछ दे दूं। तो बाबा साक्षी है, कर्तव्य करते हुए, पालना करते हुए, पढ़ाते हुए साक्षी दृष्टा भी है। वो चले गए तो बाबा सोच नहीं रहा होगा मैंने इन पे इतनी मेहनत की फिर भी भाग गए, नहीं सोचता वो, उनका वही पार्ट है। याद है ना 16-16 घंटे बाबा रहा है, शाम को 6 बजे आके सवेरे 10 बजे गया है, एक एक से मिला है सर रात। मनोवैज्ञानिक भी बैठे होते थे, कई हैरान होते थे, सचमुच भगवान है। जब आया था जितना फ्रेश तब चेहरा था उतना ही फ्रेश तब है जब जा रहा है। मनु 16 घंटे रात को बैठे बात करे, चेहरे पर चिन्ह आ जाएंगे थकान के, खाना पीना भी कुछ नहीं, सचमुच भगवान है। तो बाबा जिस तरह कर्तव्य पालन करते हुए भी साक्षी है, वैसे ही हम सब भी, माताओं को मैं विशेष कहूंगा, परिवार की पालना करते हुए, बच्चों के लिए सब कुछ करते हुए भी साक्षी रहना होगा। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो आजकल निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में बहुत ज्यादा है, गलत राह पर जाते हैं, इससे माताएं बहुत दुखी होती हैं। साक्षी भाव अपनाना ही होगा, साक्षी होंगे तो ही उन्हें सकास दे सकेंगे। सभी ध्यान दें, जो परिवार वाले वो ध्यान दें, अगर अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो बच्चों के लिए वो कर्तव्य भी आप नहीं कर सकेंगे जो किया जा सकता है। एक माता आई अभी, बहुत परेशान थी, छोटी आयु, उसको 2 लड़के, बड़ा बच्चा मर गया। बड़े बच्चे की मृत्यु का इफेक्ट बाप पर इतना आया कि उसका बुरा हाल हो गया, वो पागल जैसा हो गया, फिर शराब पीने लगा शांति के लिए, अब बुरा हाल है। देखिए मनुष्य के कर्म गति और उसकी मनोस्थिति, जो दूसरा बच्चा है जो उसकी युगल है उनके लिए भी वो कुछ नहीं कर सकता जो उसे करना चाहिए। नौकरी भी छूटी, अब ये उसकी पत्नी 2000 रुपए की नौकरी कर रही थी, अभी मिली मुझे परसों ही। तो हम अपनी स्थिति को बिगाड़े नहीं, विनाश के खेल को साक्षी होकर देखना छोटा काम नहीं होगा। अति अति महावीर आत्माएं विनाश को देख सकेंगे, अति अति कम शक्ति वाले तो पहले ही झटके में साफ ऊपर चले जाएंगे, जो रहेंगे वो ब्राह्मण भी परेशान रहेंगे बहुत, क्योंकि ब्राह्मण भी तो भी आएंगे ना, और बहुत सारे करोड़ों आएंगे, जिन्होंने अपनी स्थिति अच्छी नहीं बनाई वो विनाश काल में कष्ट बहुत पाएंगे। इसलिए कर्तव्य पालन, साक्षी भाव, सकाश देना। तो अपने परिवार को, अपने काम धंधों को भी ठीक से संभाला जा सकेगा। बाप समान, हम बाबा के पांच गुण निकालते हैं, पांच महानताएं जिन पर हमें अटेंशन देना है समान बनने के लिए। पहली, सर्वस्व त्यागी, बहुत अच्छी बात है हरगोविंद। हाँ, और थोड़ा आगे चले, ये अंतिम पेपर है बहुत सुंदर धारणा, नष्टो मोह नॉलेज फुल, चार बातें थी ना। और बोलो। हाँ, वो चारों तो थी, और बोलो। बाबा पालनहार, और बोलो। ब्रह्मा बाबा की महानताएं जिनके कारण वो बहुत महान बन गए, महान योगी बने, पहले नंबर की आत्मा, ऐसे महान बने कि लोग उन्हें ही भगवान मानने लगे। क्षमा भाव, नष्टो मोहा, पीछे वाले बोलो, बहुत बातें हैं अभी आई नहीं, लहर निकालो अपने अंदर। सर्वस्व समर्पण, संपूर्ण निरहंकारी, शुभ भावनाओं से भरपूर, माता पिता, जो माता पिता यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं माता पिता की अपने बच्चों के लिए कैसी दृष्टि होती है, कैसी भावना होती है, कैसी इच्छाएं होती हैं, वही बाबा में। सबके माता पिता, सबके कल्याण की भावना, सबको आगे बढ़ाने की इच्छा। बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, बाबा को नशा है। जैसे किसी बाप के चार लड़के बड़ी बड़ी पोस्ट पर हों, उन्हें नशा रहता है, बाबा को भी नशा है, मेरा हर बच्चा राजा बेटा है। ये सब बाबा की धारणाएं हैं, ब्रह्मा बाबा की भी हैं। विचारों में महानता, राजाई संस्कार यहीं पर, राजा भविष्य में बनेंगे। अब अपने पास कुछ नहीं था, जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक तो यज्ञ बहुत साधारण रहा ना। कम से कम बाबा को 14 साल पहले वो तो ठीक ठीक बीत गए, लेकिन बाद के 33 साल तक कितने बचे, 16-17 साल, इनमें तो यज्ञ साधारण रूप में रहा ना, वगैरह बात भी चला साधारण रूप में रहा। तो विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा संपूर्ण त्यागी रही, साक्षी भाव में रही, एक बल एक भरोसे रही। सोचने की बात है, हम कई परिवार वालों की बातें सुनते हैं, समस्याएं आई, 6 मास में ही सबका हाल बिगड़ गया, और बाबा के पास 5-7 साल चला बेगरी पार्ट, 50 से चालू हो गया था, यहाँ आए चालू हो गया। काबू में आए तो एक तरह से जैसे विघ्नों के पहाड़ टूटने लगे, ब्रजकोठी में रहे, नीचे शमशान था, सब गड़बड़ होने लगी। लेकिन बाबा ने ये नहीं सोचा क्यों आ गए, शायद गलत जगह आ गए, क्योंकि शिव बाबा ने चुनी थी जगह। संपूर्ण निश्चय, एक बल एक भरोसे, इतने समय में भी बाबा की कोई स्थिति बिगड़ गई हो, उसने सोचा हो क्या होगा, अब भविष्य का तो पता नहीं था ना कि इस तरह सेवाएं होंगी। बाबा ने कहा हुआ था तुम पहाड़ियों पर बैठकर तपस्या करोगे, शिव बाबा ने, तो बाबा को वही था, पहाड़ी पर ले आए बाबा, अब यहाँ तपस्या करनी है, आगे इतना सब कुछ होगा, ये किसी को अंदाज नहीं था। लेकिन संपूर्ण अडोलता कि जो बाबा कर रहा है उसका यज्ञ है, जिस तरह वो यज्ञ को आगे बढ़ा रहा है, इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो न केवल मालिक है, सर्वशक्तिवान भी है, नॉलेजफुल भी है, त्रिकालदर्शी भी है, उसे सब पता है, उससे बड़ा मैनेजर, उससे बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर, उससे बड़ा चेयरमैन तो कोई हो ही नहीं सकता, सब कुछ उसके पास है। तो वो अपने यज्ञ को बिल्कुल एक्यूरेटली चला रहा है। ये सोचने की जरूरत नहीं ये ऐसा हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। जगदीश भाई कहा करते थे ना, भाई ऐसी स्थिति देख के तो लगता है सतयुग नहीं आएगा, पर अब सतयुग तो आएगा ना। मैंने अभी देखा पूना में मैं था, तीन वहां अलग अलग सब जोन थे, दादी जान की उनको बहुत कह के आई थी भाई मिलो, तो जिस भाई ने प्रोग्राम रखा था उसने सब सेंटर्स पे जा जा के निमंत्रण दिया, बहनों को भी निमंत्रण दिया जो तीनों सब जोन की बड़ी बहनें थी, प्रोग्राम में सब आई, सबके भाई बहने आए, तो एक यूनिटी का स्वरूप प्रारंभ किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, मैं जगदीश भाई की बात याद दिलाई, मैंने कहा अब जगदीश भाई होते तो कहते नहीं अब सतयुग आएगा, आप लोग मिलने लगे, राजाएं मिलने लगे ना। बाबा ने कहा ना आज भी राजाओं में फूट रही तो विदेशियों ने जीत लिया अंग्रेजों के राज में, उनका तो नियम ही ये था नीति, फूट डालो सब अलग अलग कर दो कमजोर हो जाएंगे राज तुम्हारा, उन्हें निमित्त मात्र राजा बनाते रहो माल सब तुम्हारा। तो वो राजा कहाँ है, सब कहाँ है वो राजा, इधर ही है ना सब, जो कलयुग के राजा वो अब भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो राजा मिल गए तो विदेशी सत्ता आ नहीं पाएगी ना, तो राजाओं का मिलना प्रारंभ हुआ, ये खुशी की बात है। तो स्थापना का कार्य उतना ही तेजी से चलेगा। बाबा संपूर्ण निरहंकारी, जिस धारणा पर हमें ध्यान देना है, संपूर्ण निरहंकारी, मैंपन कहीं नहीं। मैं ब्रह्मा बाबा के लिए सोचा करता हूँ, देखो सबसे बड़े त्यागी, सबसे बड़े तपस्वी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, यूनिवर्सिटी को टॉप कर दिया ना, पहला नंबर लिया है भगवान ने, जो यूनिवर्सिटी खोली उसको टॉप किसने किया, ब्रह्मा बाबा ने, पहला नंबर, चारों सब्जेक्ट में सबसे आगे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, यज्ञ की स्थापना के निमित्त, लेकिन संपूर्ण निरहंकारी, मैंपन से मुक्त। मैंपन से मुक्त होना यह संपूर्णता की राह पर चलने के लिए परम आवश्यक है। मैंपन दीवार है, बाबा के महावाक्य अव्यक्त, मैंपन आया गुलदस्ता मुरझाया, सेवा का गुलदस्ता मुरझा जाता है जब मैंपन आता है। आज भी था ना मुरली में, भाव स्वभाव के कारण सेवाओं में सबसे ज्यादा विघ्न पड़ता है, किसी किसी को इतना क्रोध आता है कि किसका सामना कर लेते हैं, भगवान का भी सामना कर लेते हैं। थे हमारे वहां एक व्यक्ति ऐसे, वो बाबा का भी सामना कर लेता था, लड़ने को तैयार हो जाता था, उसको पता नहीं था ये कौन है, अगर तुम्हारे ऊपर भयानक दृष्टि डाल दी तो यहीं जल के नष्ट हो सकते हो। तो उसको बाबा बहुत समझाते थे, तो वो हम जानते हैं उसे, आप लोग नहीं जानते, तो कई कई में क्रोध भी ऐसा होता है। तो देखो बाबा फिर भी उस आत्मा को प्यार देता रहा, दादी प्यार देती रही, दादी में बाबा की बहुत सारी चीजें आ गई थी ना, प्यार देती रही उनको भी, सम्मान भी देती रही। तो हम सभी बाप समान बनेंगे, तो दो बातें याद रखेंगे, अव्यक्त महावाक्य हैं, यदि तुम्हें फरिश्ता बनना है तो जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं वैसे ही तुम भी देखो। एक बात बाबा कह रहे हैं, और जैसे मैं सबको सकाश देता हूं वैसे ही तुम भी दो। इन दो चीजों पर विशेष रूप से हम फोकस करेंगे, बाकी बाबा का त्याग, बाबा की निरहंकारिता और बाबा की श्रेष्ठ भावनाएं, इन तीन चीजों को और ले लेते हैं, त्याग, निरहंकारिता और श्रेष्ठ भावनाएं। किसी के लिए गलत भावना नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी देश के हो, विरोधी हो, आर्य समाजी थे, विरोध करते थे, किसी कभी बाबा के मुख से भावनाओं से किसी ने नहीं देखा होगा कि बाबा उन्हें नफरत की दृष्टि से देखता है। बाबा ने नाम ही दे दिया था, ये तो तुम्हारे परम मित्र हैं। बहुत सुंदर भावना। तो सकास भी बाबा की तरह हमें देना है। सोचो, विजन देखो, ऊपर देखो, बाबा ऊपर बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा। सारा दिन क्या करते होंगे? बच्चे याद करते हैं ना, जहां याद, जिसने याद किया उसकी तरफ अटेंशन सकास, किसी ने दुखी होकर याद किया उसकी तरफ अटेंशन सकास, किसी ने समस्याओं में याद किया उसकी तरफ तुरंत दृष्टि चली गई सकास। ऐसे ही हम भी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने लगे। हमें इसके लिए ऊपर रहना पड़ेगा। लाइट होंगे तो लाइट दे सकेंगे। हमें आपको एक अनुभव की बहुत अच्छी सकास देने की बात सुना देता हूँ। इस पर सभी फोकस करें, सवेरे भी, शाम को भी, मुरली के बाद भी। मुरली के बाद करते हैं ना यहाँ पे 10 मिनट, सवेरे भी करेंगे, मुरली के बाद भी और शाम को भी। 3 टाइम तो अच्छे हो ही गए, बाकी और समय भी सकास देते रहेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हम अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ तारों के बीच, ऊपर से नीचे सागर को देखेंगे, सागर को दृष्टि देंगे, वाइब्रेशंस देंगे। संकल्प करेंगे, बाबा की प्योर किरणें मुझ पर आ रही हैं, पहले ही अभ्यास, फिर मेरे मस्तक से या नैनों से सागर को जा रहे, जल जल देखो सामने। जिसने सागर देखा होगा उसको तो और भी जी होगा, बाकी काल्पनिक दृष्टि से देखो सागर ही सागर, पानी ही पानी। कुछ देर हमारे चारों ओर, अब 3 चीजें हैं जब हम ऊपर हैं, संपूर्ण आकाश, अग्नि। अग्नि इस संपूर्ण प्रकृति में सूक्ष्म रूप से फैली हुई है, सभी को मालूम होना चाहिए, और हवा। जैसे हवा फैली हुई है वैसे ही अग्नि भी फैली हुई है। सूरज की किरणें आती है ना, उसकी अग्नि चारों ओर फैली रहती है। तो हम वहां खड़े होकर आकाश में प्योर वाइब्रेशंस फैलाएंगे, संपूर्ण आकाश में जा रहे हैं, संपूर्ण वायु से पवित्र हो रही है, संपूर्ण अग्नि पावन हो रही है। फिर ऊपर से ही नीचे धरती पर नजर डालेंगे। पृथ्वी एक तत्व है, पृथ्वी को देखते हुए मस्तक से पावरफुल किरणें जा रही हैं, धरती में समा रही हैं, धरती के अंदर फैल गई हैं, उन्हें शुद्ध कर रही हैं, सतो प्रधान। बहुत मजा आएगा एक एक को देने में, समय भी अच्छा निकलेगा इसमें, और अपनी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्लोब को भी सकास देना है, वो तो विधि सबको मालूम है। अपने सामने विश्व का गोला देखेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। पहले बाबा से लेंगे, फिर भ्रकुटी से फाउंटेन की तरह, पिचकारी की तरह किरणें पड़ने लगी सामने ग्लोब पर, विश्व के गोले पर। ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास और मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब हर घंटे जो गीत बजता है, जो शांतिवन वाले हैं, उसमें ग्लोब को सकास देंगे, अटेंशन रख के। ये सबसे बड़ा पुण्य है, सब अटेंशन दें, ये सबसे बड़ा पुण्य है। जितनी ज्यादा हम सकास देंगे उतनी पुण्य आत्मा बनेंगे, उतने ही हमारे जीवन के सभी विघ्न नष्ट होते जाएंगे। निर्विघ्न बनते जाएंगे। अभी से आदत डाल लेनी है बहुत अच्छी अच्छी सकास देने की, तो विनाश काल में जहाँ भी हम सुनेंगे, रोज सुनेंगे, दिन में कई कई बार सुनेंगे, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, तुरंत सकास देंगे, तो हमारी बहुत बड़ी सेवा आत्माओं को चैन देने की, उनके दुख दर्द कम करने की, उन्हें मुक्त करने की सेवा चलती रहेगी। मुक्त करना बहुत जरूरी होगा ना? देखो किसी के ऊपर ऊपर से पत्थर गिर गया, वो आधे मरे हो गए और वो तड़प रहे हैं, उन्हें निकालने वाले भी कोई नहीं आ रहे अभी। अब देखो बस गिरी, ऊपर से नीचे आने में लोगों को पौना घंटा लगा होगा, मैसेज जाए, लोग आए, शांतिवन से भी जाने में आधा घंटा लग गया होगा, आधा घंटा किसी की नाक पर, सिर पर, आंखों पर पत्थर गिरा हो, सांस भी न लिया जा रहा हो, बेचैनी हो रही हो, आधे मरे हो गए हो, ऐसे में हमारे वाइब्रेशंस उन्हें देह से मुक्त करेंगे, इसकी बहुत जरूरत होगी। तड़पते हुए मनुष्य जिनका इलाज भी नहीं हो सकता, इलाज होगा ही नहीं, दयनीय स्थिति हो जाएगी। आप सुनते ही हैं बिल्डिंग्स गिर गई, नौ नौ दिन लोग अंदर दबे रहे। अब आप सोचो नौ दिन बिना पानी के कोई रहे, कितना कठिन काम है, बिना खुली हवा के कोई रहे, कहां कहां से थोड़ी हवा श्वास के लिए मिल रही होगी, चोट लगी होगी, उस चोट को सहते हुए नौ दिन रहे। धर्मराज की सजा है ना, नौ युगों के समान उसका समय बीतेगा, अनिश्चितता रहेगी, मृत्यु है या कोई निकाल लेगा। ऐसे में हमारे वाइब्रेशंस दोनों काम कर सकेंगे, या तो उनको कोई निकाल लेगा या उनका देह छूट जाएगा। तो हमें सकास देने की आदत को बढ़ाते चलना है, साथ साथ मैं जो एक बात आपको कह रहा हूँ, आप पांच बार करना दिन में, बाप दादा साइड में खड़े हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, बस ये सीन, और बाबा बोल रहे हैं, अब कुछ कुछ आप सुनो बाबा से, मैं हूँ, चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं, समस्याओं से घबराओ नहीं, मैं यहीं हूँ, विजय तुम्हारी होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बहुत पावरफुल फीलिंग्स होने लगेगी। इधर ही बाबा नीचे खड़े हैं, सिर पर हाथ, किसी को जैसे अच्छा लगे आगे खड़े हैं, सिर पर हाथ, किसी को अच्छा लगे पीछे खड़े हैं, सिर पर हाथ, बहुत अच्छा अनुभव। एक बहन ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, हमने इंटरनेशनल योग था ना संडे को, तो कमेंट्री से कराया था, वहां बहुत लोग थे, पूना में बहुत बड़ा हॉल था भरा हुआ, ब्राह्मण बहुत लगन से आए थे, तो एक बहन जो स्टेज पे बैठी थी उसने बहुत अच्छा अनुभव किया कि बाबा को देख रही है वो, और बाबा का जो ओरा है, बिंदु ओरा प्रभा मंडल, एक घेरा दूसरा वो बढ़ता जा रहा है, अब ये भी उस घेरे में आ गई और ये देख रही है वो घेरा बढ़ते बढ़ते सारे संसार को उसने अपने अंदर ले लिया है, और बाबा बोल रहे हैं इसी तरह सारा संसार मेरे अंदर है। शास्त्रों में भी हैं ये बातें। विवेकानंद को जब रामकृष्ण परमहंस ने छू दिया था पैर से, तो उसकी यही स्थिति हो गई थी, ब्रह्म वही फैला हुआ है, सारा संसार उसमें आ गया है, क्योंकि वो योग से पहले वो बता रही थी कि उसने बैठने से पहले बाबा से बात की, बाबा मैं अपने को और आपको संपूर्ण रूप से जानना चाहती हूँ, मुझे कुछ कुछ बताते रहो, तो बाबा ने ये दिखाया, देख लो ये है मेरा अब का स्वरूप। तो केवल बिंदु नहीं, उसका औरा फैलता गया फैलता गया फैलता, जैसे बाबा दिखाते हैं ना सीन में कि सब बच्चे ऊपर गए और बाबा ने अपनी बाहें इतनी बड़ी कर दी, सब बाहों में आ गए। तो ऐसा अभ्यास जिसमें हमें आभास रहेगा बाबा साथ है। ठीक है, ये सब करते रहेंगे। फिर वही शैलेंद्र भाई है, दोबारा प्रोग्राम बनाना, वो भूल गए थे पिछली बार भी, उन्हें कहना। आज क्या तारीख हुई? 23 और 7 30 को बना ले, याद रखना है। आज का ही दिन होगा ना, आज मंगलवार। ओम शांति। अब चलो बाबा साथ में, चाहे अपने पीछे खड़ा करो, चाहे आगे, चाहे लेफ्ट राइट कहीं भी, और उसका हाथ मेरे सिर पर।